ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಅನುವಾದ. ಉಸ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಚೋರೋನೆ ನರ್ ಪಶು ಬಲೆ ಕಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಜಡ ಭರತ್ ಕೋ ನಹಲಾಯ ನಯ ವಸ್ತ್ರ ಪಹನಾಯ ಪಶು ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಭೂಷಣೋ ಕೆ ಅಲಂಕೃತ ಕಿಯಾ ಉಸ್ಕೆ ಶರೀರ ಪರ ಸುಗಂಧಿತ ಲೇಪ ಕಿಯಾ ತಥಾ ತಿಲಕ ಚಂದನ್ ಎವಂ ಹಾರ ಸೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಿಯಾ ಉಸೆ ಅಚ್ಚಿ ತರಹ ಭೋಜನ ಕರಾನೆ ಕೆ ಬಾದ ಮೇ ವೆ ದೇವಿ ಕಾಲಿ ಕೆ ಸಮಕ್ಷ ಲೇ ಆಯೆ ಔರ್ ದೇವಿ ಕೋ ಧೂಪ ದೀಪ ಮಾಲಾ ಖೀಲ್ ಪತ್ತೆ ಅಂಕುರ್ ಫಲ ತಥಾ ಫೂಲ್ ಭಿ ಭೇಂಟ ಚಢಾಯಿ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ನೊನ್ನೆ ನರ್ ಪಶು ಕಾ ವಧ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಪೂರ್ವ ಗೀತ ಸ್ತುತಿ ದ್ವಾರಾ ಎವ ಮೃದಂಗ ತಥಾ ತುರ್ಹಿ ಆದಿ ಬಜಾಕರ್ ದೇವಿ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕಿ. ಇಸ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಜಡ ಭರತ್ ಕೋ ಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಸಮಕ್ಷ ಬೈಠಾ ದಿಯಾ. ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಸ್ವವಿಧಿನಾ ಶಬ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೈ. ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಕೋಯ್ ಭಿ ಕೃತ್ಯ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೋ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಕಿಂತು ಯಹಾಂ ಪರ್ ಯಹ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಚೋರೋ ತಥಾ ಉಚಕೋನೆ ನರ್ ಪಶು ಕೋ ಮಾರನೆ ಕಿ ಅಪ್ನಿ ವಿಧಿ ನಿಕಾಲಿ ಥಿ. ತಾಮಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ದೇವಿ ಕಾಲಿ ಕೆ ಸಮಕ್ಷ ಬಕ್ರೆ ಯಾ ಭೇಸೆ ಕಿ ಬಲಿ ದೇನೆ ಕಾ ವಿಧಾನ ಹೈ. ಕಿಂತು ಉಸ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಿ ಬಲಿ ಕಾ ಚಾಹೆ ವೆ ಕಿತನಾ ಹಿ ಮೂರ್ಖ ಕ್ಯೂ ನ ಹೋ ಕೋಯ್ ಉಲ್ಲೇಖ ನಹಿ ಹೈ. ಯಹ ವಿಧಾನ ಡಾಕುವೋ ದ್ವಾರಾ ಕಲ್ಪಿತ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಥಾ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಸ್ವ ವಿಧಿನಾ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹುವಾ ಹೈ. ಯಹಾಂ ತಕ್ ಕಿ ಆಜ್ ಭಿ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞ ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಕಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿಯೇ ಬಿನಾ ಕಿಯೇ ಜಾತೆ ಹೈ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥ ಹಾಲ್ ಹಿ ಮೇ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮೇ ಏಕ್ ಬೂಚಡ ಖಾನೆ ಕಾ ವಿಜ್ಞಾಪನ ದೇವಿ ಕಾಲಿ ಕೆ ಮಂದಿರ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಕಿಯಾ ಗಯಾ. ಮಾಂಸ ಖಾನೆ ವಾಲೆ ಲೋಗ್ ಐಸಿ ದುಕಾನೋ ಸೆ ಯಹ ಸೋಚ್ ಕರ್ ಮಾಂಸ ಖರೀದತೆ ಹೈ ಕಿ ಯಹ ದೇವಿ ಕಾಲಿ ಕಾ ಪ್ರಸಾದ ಹೈ. ದೇವಿ ಕಾಲಿ ಕೆ ಸಮಕ್ಷ ಬಕ್ರೆ ಯಾ ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಪಶು ಕಿ ಬಲಿ ಕಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಇಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ಹುವಾ ಹೈ कि लोग बूचड़ खानों से मांस न खरीदें और इस प्रकार पशुओं के वध के लिए उत्तरदायी न हों। बत जीवों में मांस खाने तथा संभोग करने की सहज प्रवृत्ति होती है, फलतः शास्त्र उन्हें कुछ छूट देते हैं। वास्तव में शास्त्रों का उद्देश्य ऐसी जघन्य प्रवृत्तियों को रोकना है, किंतु साथ ही वे उनके लिए कुछ विधि विधान भी प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रसंग ये चल रहा है, जड़ भरत अपने आप को एक पागल व्यक्ति की तरह पेश कर रहे हैं सारे समाज में, और लोग इसी तरह से उन्हें समझते भी हैं, सोचते हैं कि ये कोई गूंगा बहरा व्यक्ति, शायद ये पागल ही है। और एक बार एक डाकुओं का राजा, वो पशु बलि चढ़ाना, वो नर बलि चढ़ाना चाहता था, और उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि पशु तुल्य था। एक ऐसा व्यक्ति पाया भी गया था, परंतु किसी न किसी तरह से वो भाग पड़ा, इसलिए दूसरे व्यक्ति की खोज में इस डाकुओं के सरदार के आदेश के अनुसार ये अन्य डाकू इधर उधर घूम रहे थे। अचानक जड़ भरत को देखा, शरीर से बड़ा हृष्ट पुष्ट और मंद बुद्धि वाला लगता था, तो उसे जबरदस्ती यहां पर सरदार के पास लेकर आए। और यहां इस श्लोक में वर्णन है कि फिर जब वो काली भद्रकाली देवी के सामने जड़ भरत को लेकर आए तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने अच्छी तरह से पहले जड़ भरत को नहलाया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, और फिर देवी की बड़े धूमधाम से पूजा की, पुष्प गंध फल अंकुर इत्यादि अर्पण किए, और वहां पे नाना प्रकार के वाद्य बजे, वहां काली का गुणगान हो रहा था। इसे कीर्तन तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काली देवी की प्रशंसा में कोई मंत्र बोलना वगैरह ये सब चालू था। प्रभुपाद जी बताया करते हैं कि बंगाल में ये काली कीर्तन बहुत प्रसिद्ध है। प्रभुपाद तो खुद बंगाल के थे, तो बताया करते थे ये क्या है, ये काली कीर्तन मतलब क्या है। कीर्तन मतलब कृष्ण कीर्तन, किसी और का कीर्तन नहीं होता है। कीर्ति केवल भगवान की होनी चाहिए। जिस तरह से ये जयंती शब्द का प्रयोग जो होता है, खास करके भारत में हम देखते हैं, वो किसी भी राजनेता के लिए या सामाजिक नेता के लिए प्रयोग किया जाता है, ये जयंती वो जयंती, कोई महान राजा हुआ हो उसकी भी स्मृति में एक दिवस जयंती कहलाते हैं, कोई स्वतंत्र सैनिक हो उसके स्मृति में उनकी जयंती, और फिर छुट्टियां होती हैं पाठशालाओं में दफ्तरों में। लेकिन जयंती केवल भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी के लिए भी नहीं। ठीक उसी तरह से कीर्तन शब्द का प्रयोग भी केवल भगवान के गुणगान के लिए किया जाता है। जब भगवान के गुणों का गान किया जाता है, उनकी कीर्तियों का वर्णन किया जाता है, तो उसे कीर्तन कहते हैं। इसलिए काली कीर्तन ये सही नहीं है। जिस तरह से भक्त का प्रयोग केवल भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान के भक्तों के लिए, कृष्ण के भक्तों के लिए, विष्णु के भक्तों के लिए, लेकिन देवी देवताओं के जो उपासक होते हैं उनको भक्त नहीं कह सकते, ज्यादा से ज्यादा उनको उपासक कह सकते हैं, लेकिन भक्त नहीं। भक्ति ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और भक्ति में कम से कम ये उद्देश्य किसी उपासक को होना चाहिए कि भले अब वो पूरी तरह से निस्वार्थ रूप से नहीं कर रहा हो सेवा, लेकिन कम से कम उसकी इच्छा है कि आगे चल के उसकी सेवा शुद्ध हो जाएगी। रूप गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा तो दी है भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति क्या है? जिसमें हम अनुकूल भावना रखते हैं भगवान कृष्ण के प्रति और कोई अन्य अभिलाषा मन में नहीं रखते हैं सिवाय भगवान कृष्ण की सेवा के। इसमें कोई कर्मकांड का ज्ञान कांड का कोई मिश्रण नहीं होता। ऐसी सेवा को उत्तम भक्ति कहते हैं। तो भले हर एक भक्त उत्तम भक्त न हो सकता है उसके हृदय में थोड़ी भौतिक इच्छाएं अभी तक हो, हालांकि वो श्री कृष्ण की हृदय से सेवा कर रहा है, परंतु अगर प्राधान्य उसके हृदय में सेवा की है और अंतिम उद्देश्य उसने अपने जीवन का ये बनाया है कि मुझे शुद्ध भक्त होना है, भगवान से कोई भौतिक चीज नहीं मांगनी है, अगर कम से कम हृदय से उसने अपने लिए ये उद्देश्य बना लिया हो तो उसे भक्त कहते हैं। लेकिन जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं, न तो उनका मन शुद्ध रहता है और न ही उनका उद्देश्य शुद्ध रहता है। हम मांग सकते हैं कि ठीक है, इस समय वो उस मार्ग में ज्यादा प्रगति नहीं कर चुके हैं, इसलिए उनका मन अशुद्ध है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामस्तस्तज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्य नियतः स्वया। वो कहते हैं कि कामस्तस्तज्ञान, उनका ज्ञान उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनके मन में विकार है। किस चीज का विकार? काम का विकार। नाना प्रकार के कामनाएं उनके हृदय में उमड़ रही हैं। कामस्तस्तज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, इसलिए वो अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, मेरे शरण में नहीं आते हे अर्जुन, ऐसा कृष्ण बताते हैं। और फिर ऐसे देवी देवताओं के शरण में जाकर क्या करते हैं? तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्य निहत स्वया। फिर अलग अलग तरह के विधि विधानों का पालन करते हैं। शास्त्र में ऐसे विधियों का वर्णन है, अगर आपको दुर्गा की पूजा करनी है तो ये विधान है, गणेश जी की करनी है तो ये विधान है, कर्मकांड के भाग में ये सारे विधि विधानों का वर्णन है। तो उनका हृदय अशुद्ध रहता है और उनका उद्देश्य भी अशुद्ध रहता है। उनका उद्देश्य क्या रहता है? कि हम कोई न कोई प्रकार के भोग की सुविधाएं, कोई भौतिक प्रगति या कोई ऐसे भौतिक आशीर्वाद इन देवी देवताओं से प्राप्त करेंगे। उनके मन में कभी ये इच्छा नहीं होती कि ये हमारे आराध्य देव हैं, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे, हमें उनसे कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए, केवल उनके प्रति हमें हृदय में प्रेम जागृत करना है, ये उनका उद्देश्य नहीं रहता। हमेशा उद्देश्य रहता है कि हमें कुछ ना कुछ उनसे चाहिए। जब ये भावना रहती है और जब उद्देश्य भी ऐसे रहता है तो उस व्यक्ति को भक्त नहीं कह सकते। इसलिए ये जयंती, कीर्तन, भक्त, ये अलग अलग तरह के शब्द जो हम भक्ति के दर्शन में सुनते हैं, कहते हैं, इनका बड़ा महत्व होता है। लेकिन आजकल इन शब्दों को बड़े ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कोई भेदभाव किए बिना। जैसे हम देखते हैं कोई राजनेता जो होते हैं, जो थोड़ा बहुत पॉपुलर होना चाहते हैं समाज में, ऐसे कोई अनुष्ठान होते हैं समाज में, जैसे गणेश चतुर्थी, तो जगह जगह उनके बैनर लगाए होते हैं, गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत, और फिर वो राजनेता का नाम नीचे ताकि उसकी पब्लिसिटी हो जाए। और कौन से हैं ये गणेश भक्त जो उस बैनर के नीचे से जाते हैं? शराब पीकर आते हैं, किसी न किसी प्रकार से नाचते हैं और कुछ भी ऐसे भौतिक इच्छाएं मन में रखते हैं, सिनेमा के गाने बजाते हैं, ये हैं गणेश भक्त। तो ये भक्त शब्द का आज कितना सस्ता हो गया है, कोई भी भक्त हो गया। कोई आया एक बार, कुछ भी उसने कह दिया, भक्त हो गया, किसी भी देवी देवता का हो, किसी का भी हो। लेकिन नहीं, हर चीज के लिए हमें शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। यहां तक कि अगर किसी को काली की भी पूजा करनी है फिर भी विधि विधान है, जैसे प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बता रहे हैं। और ये जो डाकू लोग थे वो स्व विधाना मतलब अपने ही मन में जो उनके विचार आए मनगढ़ंत ढंग से वो पूजा कर रहे थे, कुछ बाजा बजाना कुछ गीत गाना, जैसे उनके मन में आया उन्होंने जैसे उचित समझा वैसे किया। लेकिन शास्त्र में ऐसे मार्ग नहीं बताया गया था। शास्त्र में ये बताया जाता है कि उन लोगों के लिए जो मांसाहार से बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं सकते हैं उनके लिए मांस खाने के लिए कोई अनुमति दी गई है, लेकिन सीमा में और बड़े कड़क विधि विधान है। स्वयं उस व्यक्ति को पशु की हत्या करनी चाहिए और उसके लिए एक तरीका होता है, कई मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। ये मांस जो शब्द है इसका भी अर्थ है मांसः, जब व्यक्ति पशु की हत्या करता है तो उसे वो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, साथ में मांस बोलना चाहिए मांसः, मैं तुम्हारी हत्या कर रहा हूं लेकिन अगले जन्म में मैं तुम जैसे बन जाऊंगा मांसः, तुम मेरी मुझे एक पशु की का शरीर मिल जाएगा और तुम मेरी हत्या करोगे, इस जन्म में मैं तुम्हारी हत्या कर रहा हूं किसी आने वाले जन्म में तुम मेरी हत्या करोगे। तो आगे चल के ऐसे बार बार करके एक कोई बुद्धिमान व्यक्ति के होश ठिकाने आ जाते हैं, सोचता कि मैं क्या बोल रहा हूं, आज मैं इतने पशुओं की हत्या कर रहा हूं तो मुझे कितने सारे जन्म लेने पड़ेंगे जिसमें कि ये लोग मेरी हत्या करेंगे। तो फिर धीरे 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 से वो मांसाहार करना कम करता है, फिर कि थोड़ी धीरे धीरे से शायद भक्तों का संग मिल जाता है, इस तरह से कई जन्मों की अवधि में फिर वो भक्ति मार्ग में चले आता है। काली के सेवा में या काली के उपासना में ऐसे लोगों को बताया जाता है कि आप एक निम्न श्रेणी के पशु को भोग चढ़ा सकते हैं, जैसे बकरी है या कुछ, कभी भी गाय नहीं, और गाय की बात दूर है, कभी पशु भी नहीं, कभी मनुष्य भी नहीं। आजकल भी हम देखते हैं कभी कभी अखबारों में सुनने में आता है कि किसी गांव में किसी एक बूढ़ी महिला ने एक बच्चे को बलि चढ़ा दिया, ऐसे कुछ हम सुनते हैं, लेकिन ये शास्त्रों में बताया हुआ नहीं है। प्रभुपाद जी स्पष्ट यहां बता रहे हैं कि मनुष्य को बलि चढ़ाने की विधि ये शास्त्रों में नहीं बताई हुई है। ज्यादा से ज्यादा जब काली देवी की उपासना करनी पड़ती है तो बकरी या ऐसे कोई निम्न श्रेणी के पशु को। लेकिन ये डाकू लोग जो थे शास्त्रों के ऊपर अपने विधि को आधारित नहीं कर रहे थे, जो मन में आया वो करते थे। इसका मतलब है कि आज जो हम देखते हैं समाज में, जिस बीमारी को हम देखते हैं कि लोग मनगढ़ंत ढंग से वो धर्म का पालन करते हैं, ये एक बहुत पुरानी बीमारी है। कुछ भी करना धर्म के नाम पे, जो मन में आया वो कर लेना, ये पहले भी हुआ करता था। जब से मनुष्य है इस भौतिक जगत में तब से ये सारी चीजें हैं। पुराने जमाने में भी नास्तिक लोग थे, मायावादी लोग थे, कोई नई बात नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, नई नहीं है, हर चीज यहां घिसा पुटा हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति और एक चीज केवल नवीन है, और वो है क्या है, कृष्ण और कृष्ण भक्ति। हालांकि कृष्ण सबसे पुराने व्यक्ति हैं, पुराणम अच्युत मनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, पुराण पुरुषम सबसे पुराने पुरुष हैं, आयु में सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी नव यौवनम च, फिर भी एक नूतन नवीन तरुण की तरह दिखते हैं। उसी तरह से भक्ति भी कभी घिसी पिटी नहीं हो जाती, सदा आनंद रहता है। इसलिए बार बार जब हम भागवत सुनते हैं, वही फिलॉसफी सुनते हैं, वही दर्शन सुनते हैं, लेकिन भक्त थकते नहीं है। जैसे आप देखिए कितने ध्यान से सुन रहे, कोई नहीं सो रहा है बिल्कुल, मतलब जो सो रहे हैं वो जाग जाएंगे, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत का जो दर्शन है कभी घिसा पिटा नहीं हो जाता है, फ्रेश रहता है। तो ये भी बीमारी पुरानी है कि मनगणित ढंग से काली को कुछ चढ़ाना, बलि चढ़ाना करना। और फिर आगे चल के काली देवी ने क्या किया वो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं, भक्तों की भावना देखकर। तो ये जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं, देवी देवता उनके प्रति कैसी भावना रखते हैं। रविवार को हम शिवजी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो भस्मासुर या वृकासुर की बात चल रही थी, तो शिवजी क्या सोच रहे थे वृकासुर के बारे में कि क्या हमारे नसीब में है, ऐसे ऐसे सब तथाकथित भक्तों से हमें पाला पड़ रहा है, ये देखो क्या क्या करते हैं ये लोग, जितने भी बड़े बड़े आज तक ये हुए हैं उपासक उनके हुए हैं सारे असुर बड़े से बड़े, तो देवी देवता क्या सोच रहे होंगे उनके बारे में। अब देखिए कहीं दुर्गा पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं दुर्गा पूजा के समय, गणेश चतुर्थी के समय, और वहां पर जो मंडल पंडाल वगैरह बनाते हैं उसमें अच्छे सिनेमा के गाने लगाते हैं, ये लोग कुछ भी करते हैं वहां पर, तो गणेश जी दुर्गा देवी क्या सोच रहे होंगे इन लोगों के बारे में, उनके मन में क्या विचार आता होगा कि देखो ये लोग मेरी मूर्ति बना रहे हैं और मेरी मूर्ति के सामने क्या क्या करते हैं। तो उनको एक प्रकार घृणा हो जाती है, उदास हो जाते हैं कि क्या है ये, क्या ये सब कर रहे हैं। इसके विपरीत कृष्ण के बारे में देखिए, कृष्ण इतने ऋणी हो जाते हैं अपने भक्तों की भावना देखकर, वो दोनों अपने दोनों जेबों में हाथ डालकर बाहर निकालते हैं जेब, कहते हैं हमारे जेब में कुछ खाली है, क्योंकि आपका प्रेम आपकी सेवा इतनी उत्कृष्ट श्रेणी की है, इतना शुद्ध है कि मैं जितना भी मेरे पास है जो आपको दे दूं फिर भी मेरा धन जो है वो कम पड़ जाएगा। और भगवान के पास क्या धन कोई कम है? नहीं। लेकिन भगवान बड़े दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि भक्तों को ये भौतिक संपत्ति चाहिए ही नहीं। भगवान सोचते हैं कि ठीक है, भक्त ने मेरे लिए इतना कुछ त्याग किया, इतने कष्ट उठाए, इतनी मेरी सेवा की, इतना प्रेम है उसके हृदय में मेरे लिए, तो मैं उसको सारा ब्रह्मांड दे दूं, जितने भी मेरे पास संपत्ति है वो दे दूं। भक्त कहता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भक्त को, केवल सेवा का मौका चाहिए। तो भगवान सोचते मैं कैसे ये ऋण को चुकाऊं, नहीं चुका सकता। फिर वो कहते ठीक है, आप जो सेवा कर रहे हैं वही आपका बख्शीश है, बस और कुछ मैं नहीं दे सकता। तो ये है भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में जो संबंध है एक ओर, और दूसरी ओर जो देवी देवता और उनके उपासक उनके बीच में जो संबंध है दूसरी ओर, कितने जमीन आसमान का अंतर है। तो खैर यहां पर ये डाकू लोगों ने जड़ भरत को भगवान के सामने काली देवी के सामने लाए हैं। काली देवी है वैसे दुर्गा देवी, दुर्गा देवी का एक रूप है, और दुर्गा देवी तो भगवान के भक्त हैं, वो शिवजी की पत्नी है, शिवजी महान वैष्णव हैं, और शिवजी इतने महान वैष्णव तो उनकी पत्नी भी तो महान वैष्णवी है, बल्कि उनका नाम ही है वैष्णवी। आपको याद है ना कृष्ण बुक में जब कंस योग माया जिसने कि छोटे बालिका का रूप लिया था, देवकी और वसुदेव की बच्ची बनकर आई थी, और कंस ने उसे पकड़ा, सोचा कि चलो ये बच्ची भी हो कोई बात नहीं लेकिन मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है, और उस बच्चे को उठाया और एक पत्थर से मारने का प्रयास किया तो बच्ची आकाश में उड़ गई और कहने लगी कि हे मूर्ख, जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसका जन्म कहीं और हो गया है और वो आगे चल के तुम्हें मारेगा। तो इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया था और बताया था कि देखो तुम ऐसे जाओ और देवकी के पुत्री के रूप में तुम प्रकट होना वहां पर, और सारी लीला का वर्णन करते हैं कि ऐसे ऐसे होने वाला है, और इसके बाद में तुम सारे जगत में प्रसिद्ध होगे। कौन से नामों से, कोई याद है बता सकते हैं, कौन से नामों से जानी जाओगी? वैष्णवी, दुर्गा, अंबिका और चंडी, ऐसे कई नामों को बताया, उनमें से एक वैष्णवी। तो दुर्गा देवी या काली ये भी वैष्णवी हैं, शिव जी भी महान वैष्णव हैं, तो वो क्या सहन करेंगे कि कोई वैष्णव को इस तरह से इसके प्रति अत्याचार किया जाए? कौन सहन करेगा? तो आगे चल के काली देवी क्या करती है वो हम सुनेंगे। आज दो महान वैष्णव आचार्यों का तिरुभाव दिवस है, उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। एक हैं श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज और दूसरे हैं श्री रसिकानंद प्रभु। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज को हम यहाँ पे तो नहीं देख रहे हैं हमारे गुरु परंपरा में ऑल्टर में, परंतु उनका हमारे परंपरा में स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद कई लाइन में आते हुए आए बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण के एक शिष्य थे जिनका नाम था उद्धव दास। उद्धव दास के एक शिष्य थे जिनका नाम था मधुसूदन दास बाबाजी, और इनके शिष्य थे जगन्नाथ दास बाबाजी। जगन्नाथ दास बाबाजी ने बाबाजी का जो दीक्षा है उसे वेश, बाबाजी वेश कहते हैं, पहले उस तरह की दीक्षा नहीं थी, वो तो केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चालू किया। वैष्णव में बाबाजी दीक्षा दी जाती थी, सफेद कपड़े पहनते थे वो, और वो किसी धाम में रहकर भजन करता था, ये बाबाजी दीक्षा थी। तो उन्होंने बाबाजी दीक्षा भागवत दास बाबाजी को दी, और भागवत दास बाबाजी के शिष्य हुए गौर किशोर दास बाबाजी, और साथ साथ जगन्नाथ दास बाबाजी भी वो भक्ति गुण ठाकुर के गुरु रहे, शिक्षा गुरु। तो ये उनका स्थान हमारी परंपरा में है। जगन्नाथ दास बाबाजी बहुत बड़े महान वैष्णव आचार्य हुए, यहां तक कि भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके बारे में कहा है कि वे गौड़ी वैष्णवों में से गौड़ी वैष्णवों के सर्वश्रेष्ठ सेनापति हैं। उनका जन्म बंगाल के मयमनसिंह जिला में हुआ था कई साल पहले, और कई सालों तक वो वृंदावन में रहे। वृंदावन में बड़े प्रसिद्ध हुए, एक शुद्ध भक्त के रूप में जाने गए। वहां पर उनका भजन अतुल्य हुआ करता था, सभी लोग जानते थे कि वो इतने कड़क अपनी साधना में थे, इतने शुद्ध भक्त थे। और फिर कई सालों वहां भजन करने के बाद वो और बंगाल में चले आए, लेकिन 1880 साल में भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन जब गए थे तो उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी का दर्शन किया और उनसे कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं, उपदेश प्राप्त किए, आदेश प्राप्त किए, उनसे हरि कथा, हरि कीर्तन सुना, उनका संग प्राप्त किया और उनसे बड़े प्रभावित हुए। भक्ति विनोद ठाकुर ने बाद में भी दूसरी बार जगन्नाथ दास बाबा जी का संग किया। फाल्गुन महीने में एक साल जब जगन्नाथ दास बाबा जी नवद्वीप में आए थे, नवद्वीप में आते आते बर्धमान जिले में, और वहां एक गांव था अमल जोरहा, वहां पर वो रहे थे। और उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी ने एकादशी के दिवस पर बहुत कथा और कीर्तन किया था और वहीं पर काफी समय तक रहे थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उस जगह में भी उनका संग प्राप्त किया। और बाद में भक्ति विनोद ठाकुर में उसी गांव में इस मिलन की स्मृति में उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया था, प्रपन्न आश्रम। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रभावित थे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रहे नवद्वीप में। कोलद्वीप से जब वो गोद्रुम द्वीप आए, आप जानते हैं कि नवद्वीप मतलब नौ द्वीप, उनमें से एक द्वीप का नाम है कोलद्वीप और एक है गोद्रुम द्वीप, जहां भक्ति विनोद ठाकुर रहा करते थे। सुरभि कुंज जाए, सुरभि कुंजे थे नामेर हाट खुले छे, खोड़ा निताए खोड़ा निताए, बड़ो सुखेर खबर गायो, भजन जानते हैं ना। तो सुरभि कुंज ये गोद्रुम द्वीप में है, जहां भक्ति विनोद ठाकुर का घर है। तो जब पहली बार जगन्नाथ दास बाबा जी कोलद्वीप से गोद्रुम द्वीप आए तो भक्ति विनोद ठाकुर बड़े खुश हुए, वहां पर आए, उनका संग किया उन्होंने, और सारे वहां के वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए कि अब जगन्नाथ दास बाबा जी यहां पर आए हुए हैं। और इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा कि चैतन्य महाप्रभु के कई लीला स्थलों को उन्होंने ढूंढ निकाला मायापुर में, नवद्वीप में, खास करके योगपीठ, श्रीवास आंगन इत्यादि। तो योगपीठ क्या है? योगपीठ मतलब जहां महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ। तो जिस स्थान में आप में से जो मायापुर गए हैं, आप जानते हैं कि वहां पर एक गौड़ी मठ है और वहां पर एक नीम का वृक्ष भी है, वहां पर एक मंदिर है, आश्रम है। तो उस स्थान को, अब तो मंदिर बना लेकिन उस समय तो कुछ नहीं था, तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने इस स्थान को अच्छी तरह से ढूंढ निकाला था। इसलिए उनका प्रणाम मंत्र है, गौरव विर्भाव भूमेस्तुम निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। गौर आविर्भाव भूमेस्तुम निर्देश, गौर आविर्भाव मतलब गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव भूमि को उन्होंने ढूंढ निकाला था। और वो वैष्णव सार्वभौम जनरल, सारे जगत में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव थे वो, सज्जन प्रिय, सारे वैष्णव उनको बहुत प्रेम करते थे। और श्रीवास आंगन, ये सारे स्थानों को उन्होंने ढूंढ निकाला। अब जब हम मायापुर जाते हैं तो हमारे लिए कितना आसान है, सारे लीला स्थलों में सब आश्रम बने हुए हैं और हमें कोई मार्गदर्शक मिल सकते हैं, वो बता सकते हैं, देखो ये स्थान में ये हुआ, ये स्थान में महाप्रभु प्रकट हुए, यहां पर वो कीर्तन किया करते थे। लेकिन जब भक्ति विनोद ठाकुर वहां रहते थे, वहां ऐसे कोई स्थान, लीला स्थान जो है वो प्रकट रूप में नहीं थे, किसी को पता नहीं था कि महाप्रभु का आविर्भाव कहां पर हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर खास कलकत्ता से आकर वहां पर ढूंढते थे और उनको संशय हुआ कि एक अमुक स्थान जो है यही महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है, लेकिन शत प्रतिशत निश्चित रूप से नहीं जानते थे। तो उन्होंने सोचा कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को हम लेकर आएंगे। तो उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत वृद्ध थे, 100 साल से भी ज्यादा उनकी उम्र थी, चल भी नहीं सकते थे और बिल्कुल बके हुए थे, शरीर उनका बिल इतना बक गया था, शायद 135 साल के भी हुए होंगे उस समय। और क्योंकि वो चल नहीं पाते तो उनके जो सेवक थे जिनका नाम था बिहारी दास, जो कि बड़े शरीर से हृष्ट पुष्ट थे, वो जब भी गौर किशोर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को कहीं जाना होता तो उनको एक टोकरी में रखकर वो अपने कंधे पे या सर पे उठाकर ले जाते, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे निवेदन किया कि आप आकर कृपया देखिए कि ये महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है या नहीं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तैयार हुए, इतने वृद्ध थे, 135 साल के, बीमार भी थे और कमजोर थे, चल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उस टोकरी में बिहारी दास उनको लेकर आए। और भक्ति विनोद ठाकुर जब उस स्थान पर उनको लेकर आए तो ये 135 साल के वैष्णव वो कूद पड़े आसमान में ऊपर, हाथ ऊपर करके, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, ऊपर कूदे, हाथ ऊपर कर कीर्तन करने लगे। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि यही स्थान है, यही वही स्थान है। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से उनको अभी गारंटी मिल गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने वहां मठ बांधना शुरू कर दिया, कलकत्ता में घर घर में जाके एक एक रुपए का दान लेना शुरू किया भक्ति विनोद ठाकुर ने। इस तरह से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की वजह से ही कई महत्वपूर्ण लीला स्थल नवद्वीप में हमारे सामने अभी प्रकट हुए हैं। फिर उसके बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी नवद्वीप में ही रहे, वहीं पर भजन करते रहे। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बिमला प्रसाद वो केवल 12 साल के थे। उनके आविर्भाव दिवस के दिन उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे कम उम्र में ही वो इतने बड़े विद्वान बने थे और खास करके ज्योतिष शास्त्र में बड़े प्रवीण थे। कम उम्र में 12 साल की उम्र में भी बड़े बड़े पंडितों से ज्यादा उनको ज्ञान था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने उनके बारे में सुना था तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर से कहा कि आपके लड़के को यहां बुलाइए बिमला प्रसाद को। तो बिमला प्रसाद वहां पर आए, 12 साल के लड़के थे। उन्होंने कहा आप ज्योतिष शास्त्र में बड़े विद्वान हो तो एक वैष्णव पंचांग बनाओ, पंजिका, जिसमें हमारे सारे वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव, हमारे वैष्णव उत्सव, भगवान के अलग अलग अवतारों के आविर्भाव इत्यादि, एकादशी तिथि, जो भी वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनका उल्लेख उसमें होना चाहिए। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, बिमला प्रसाद ने उनके आदेश का पालन किया और पहली बार वैष्णव इतिहास में ये वैष्णव कैलेंडर बना। अभी हमारे लिए तो छपके आता 5 रुपए में, हम खरीदते हैं देखते हैं, लेकिन पहली बार ये जगन्नाथ दास बाबा जी के आदेश के अनुसार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया। हालांकि इतने वृद्ध थे फिर भी उत्साह बहुत था उनको कीर्तन के लिए, प्रचार के लिए, और जब इतने कमजोर थे कि वो प्राय हिल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी अगर कीर्तन चलता तो कम से कम अपना हाथ तो उठाते, हाथ उठाकर कीर्तन में भाग लेते। तो इससे हम सीख सकते हैं कि हमारा शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम बीमार कितना क्यों ना हो, कम से कम जब कीर्तन चल रहा है हाथ तो उठा सकते हैं ऊपर। हाथ है तो कीर्तन में उठाना चाहिए, आंख है तो कृष्ण को देखना चाहिए, कान है तो कृष्ण का नाम सुनना चाहिए, जिह्वा है तो कृष्ण का प्रसाद लेना चाहिए, केवल टाइम टू टाइम, लेकिन केवल कृष्ण का प्रसाद लेना चाहिए, शरीर है तो भगवान को दंडवत डालना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो कोई काम की नहीं। अगर भगवान के कीर्तन में हाथ नहीं उठा पाए तो हाथों की क्या कीमत है। जगन्नाथ दास बाबा जी ने हमें सिखाया कि 135 साल की उम्र में भी बड़े उत्साह से वो जितना शरीर साथ देता था वैसे वो कीर्तन किया करते थे। कभी कभी वो कलकत्ता भी जाया करते थे कोई काम से, जब उनकी उम्र 100 थोड़ी कम थी, मतलब 100 साल से कम, और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर उनको अपने घर में निमंत्रण दिया करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर तो चाहते थे कि ये बार बार आए प्रसाद के लिए, वो गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी इतने वैरागी थे कि शायद ही एक आध बार जाया करते थे प्रसाद के लिए। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर मानिकतला नाम के जगह में रहा करते थे, उनका घर था वहां पर। तो इस तरह से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज नवद्वीप में रहते और वहां पर कई लीलाएं उनकी हुई। उनके जो सेवक थे बिहारी दास, वो पैसे रखा करते थे जो भी दान में आता था, क्योंकि लोग आके दान में देते थे कभी, तो स्वयं वो नहीं रखते, बिहारी दास उसको इकट्ठे करके रख देते। तो एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी ने बिहारी दास से पूछा कि अरे कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, जरा गिनो तो। अब बिहारी दास ने सोचा कि मैंने थोड़े बहुत पैसे बाबा जी महाराज की सेवा के लिए रखे हैं, अगर मैंने सारे पैसे दे दिए तो वो कुछ किसी भी चीज पे खर्च कर देंगे, मतलब किसी की सेवा के लिए कुछ भी करेंगे, और उनकी खुद की सेवा के लिए मैंने जो पैसे रखे हैं वो नहीं रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 12 रुपए जो है वो अलग से रख दिए और बाकी के पैसे उनको दे दिए। उनकी इच्छा थी कि ये पैसे से जो उनको सेवा करनी थी उनके गुरु महाराज की वो कर सकेंगे, जो भी चीजें खरीदनी थी, कुछ भी करना था। उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी प्राय अंधे हो गए थे बुढ़ापे की वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने बिहारी से पूछा बाकी के पैसे कहां गए दिखाओ। तो फिर बिहारी हंसने लगा, देना लगे पैसे, बाकी के 12 रुपए भी दे दिए, कुल मिलाकर 200 रुपए हो गए। उस जमाने के 200 रुपए समझ लीजिए, मतलब आज के जमाने के कितने हो जाएंगे रुपए। तो फिर उन्होंने कहा ये 200 रुपए के रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मिठाई वगैरह सब खरीदो और नवद्वीप में जितने भी गाय हैं उनको खिलाओ। बिहारी दास ने सोचा क्या है, कुछ हम कर देते, लेकिन अपने गुरु, उनको बड़ा आदर था, प्रेम था, तो ये महान भक्त जैसे उनका आदेश करना है, इसी में हमारी भलाई है, और वो भी गाय की सेवा है तो अच्छी बात है। तो फिर जगन्नाथ दास बाबा जी के आदेश के अनुसार नवद्वीप के सारे गायों के लिए उस दिन बड़ा फीस्ट हो गया। पेट भर के सारे गायों ने जी भर के वह गुलाब जामुन और रसगुल्ले और मिठाइयां सब खाई। और एक बार ऐसे हुआ कि आश्रम में जहां की जगन्नाथ दास बाबा जी रहा करते थे, पास में थोड़े कुत्ते रहा करते थे। कुत्ते, एक कुत्ती आती जिसके बच्चे थे, और जब भी बाबा जी महाराज प्रसाद लेना खत्म कर देते और थाली वहां रह जाती तो उसमें वो कुत्ते के बच्चे आकर जो है चाट कर उसी थाली से खा लेते। मतलब देखिए महाप्रसाद ले रहे थे वो, महा महाप्रसाद, भक्त भुक्त अवशिष्ट। ये बहुत प्रभावशाली भक्ति, ये बहुत शक्तिशाली होता है। शायद वो कुत्ते भी भगवान के धाम चले गए होंगे, पता नहीं, लेकिन रोज उनको जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का महाप्रसाद मिलता था अवशिष्ट। तो जब बिहारी दास ने देखा तो उस कुत्ते को भगाया पत्थर मार के, उसे हटाने के लिए बहुत गुस्से हो गए। फिर उन्होंने कहा, जगन्नाथ दास बाबा जी ने बिहारी से कहा, नहीं नहीं उनको हटाओ नहीं। तो फिर बिहारी दास ने कहा, लेकिन बाबा जी महाराज ये तो बड़े नीच प्राणी हैं, सब गंदा करते हैं। फिर बाबा जी महाराज कहने लगे, जो भी है लेकिन ये धाम के कुत्ते हैं, ये नवद्वीप के कुत्ते हैं, ये कोई साधारण जीव नहीं है, तो कुछ नहीं करना। इस तरह से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की दृष्टि थी। कई बार उनके पास लोग आते थे भिक्षा मांगने के लिए, और लेकिन वो कभी भिक्षा नहीं देते। जैसे भिखारी लोग में आते हैं, कुछ पैसे दे दो, यहां मंदिर में भी आते हैं कई बार, तो कभी पैसे नहीं देते लेकिन उनको सेवा में लगाते। एक बार ऐसे भिक्षुक आए थे और 3 दिन लगातार मांगते रहे बाबा जी महाराज से, बाबा जी महाराज ने भिक्षा नहीं दी और वो उपवास करके बाहर ही बैठने लगे, कुछ हमको कुछ दो। फिर आखिर 3 दिन के बाद बाबा जी महाराज ने अपने कौपिन का एक टुकड़ा फाड़, कपड़ा फाड़ कर एक टुकड़ा बिहारी दास को दिया, जाके उसको दे दो, ये मेरी भिक्षा है। वो बताना चाहते थे कि साधु का काम जो है केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं लेना चाहिए, जब तक इंद्रियां वश में नहीं हो तब तक साधु का वेश नहीं पहनना चाहिए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उन लोगों की कड़ी निंदा किया करते थे जो कि अपने जीवन यापन के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे, कथा किया करते थे, भागवत सप्ताह किया करते थे, और वो कहा करते थे कि ऐसे लोगों को प्रायश्चित करना चाहिए धाम में जाकर, और जो लोग सुनने जाते हैं उनको भी प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसे तो कथाकारों को भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर कृपा याचना करनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमने, हमारे से बहुत गलती हुई। कृष्ण का निरंतर नाम उच्चारण करके उनको हमेशा ये चीज बंद करना चाहिए, कभी भी भागवत से कमाना नहीं चाहिए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कई सालों तक वहां पर रहे नवद्वीप में, और वहीं पर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और फिर गोलोक वृंदावन नवद्वीप वापस लौटकर चले गए। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। आज और एक महान वैष्णव का त्रिभाव दिवस है, श्री रसिकानंद प्रभु। कई बार चर्चा हो चुकी है उन 3 महान वैष्णवों की जो कि श्री राजीव गोस्वामी के 3 प्रमुख शिष्यों के नाम क्या हैं, किसी को याद है? श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, वैसे नरोत्तम दास ठाकुर किनके शिष्य थे? लोकनाथ गोस्वामी। और श्रीनिवास आचार्य? गोपाल भट्ट गोस्वामी। और श्यामानंद पंडित? हृदय चैतन्य बंगाल के। इन तीनों महान आचार्यों ने अपने इन शिष्यों को जीव गोस्वामी के पास भेजा था, क्योंकि जीव गोस्वामी सबसे बड़े विद्वान थे उस समय, इसलिए उनके पास में जाकर आप वैष्णव शास्त्रों को सीखो, बड़े विद्वान हो जाओ, इसलिए उनके गुरुओं ने उनको भेजा था। तो जीव गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु हुए थे। तो श्यामानंद पंडित जब जीव गोस्वामी के आदेश के अनुसार बंगाल की ओर और उड़ीसा की ओर आए प्रचार करने के लिए, पुस्तक वितरण करने के लिए, तो उनका प्रचार वहां से आरंभ हुआ। बड़े जोरदार शक्तिशाली प्रचारक थे श्यामानंद पंडित, और उनके प्रमुख शिष्य थे रसिकानंद प्रभु। तो ये रसिकानंद प्रभु का हमारे परंपरा में स्थान है। रसिकानंद प्रभु का जन्म 1590 में साल में हुआ, रोहिणी या रायना नाम के गांव में, जो कि उड़ीसा में है। उनके पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे जिनका नाम था राजा अच्युत देव, थे बड़े धार्मिक भी। और कम उम्र में ही राजा अच्युत देव ने रसिकानंद, तब तो उनका नाम रसिकानंद नहीं था, उन्होंने नाम रखा था मुरारी, कृष्ण का नाम था। रसिकानंद तो आगे चल के दीक्षा के बाद उनको नाम हुआ। तो मुरारी की का विवाह बहुत जल्दी करा दिया। मुरारी छोटे उम्र से ही बड़े विद्वान थे, अपने पाठशाला में बहुत जल्दी सब कुछ सीख गए, और जितने विद्वान वो थे उतने ही सुंदर उनकी पत्नी भी थी, ऐसे वर्णन आता है। दोनों की बड़ी अच्छी जोड़ी हो गई, दोनों बड़े अच्छे भक्त थे। और एक दिन जब उम्र थोड़ी बड़ी होने लगी तो मुरारी के मन में इच्छा हुई कि मुझे भी कोई एक प्रामाणिक गुरु चाहिए, मुझे भी भगवान को प्राप्त करना है। तो ये इच्छा जब मन में हुई तो सोच रहे थे मन में क्या किया जाए, गुरु कहाँ से मिलेंगे, इधर उधर ढूंढते थे लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, थोड़े बहुत निराश हो रहे थे। उस समय एक आकाशवाणी आई और उस वाणी ने कहा कि हे मुरारी, चिंता नहीं करो, तुम्हारे गुरु होंगे श्यामानंद पंडित। श्यामानंद प्रभु बहुत ही शीघ्र तुम्हारे पास आएंगे, तुम दोनों का मिलन होगा और वो तुम्हें दीक्षा देंगे, तुम उनके शिष्य हो जाओगे। तो रसिका मुरारी को बहुत अच्छा लगा और फिर वो ढूंढते रहे कब आएगा। उस दिन अगले दिन जब उठे और चले गए, सामने से रास्ते से आ रहे थे श्यामानंद पंडित थोड़े भक्तों के साथ में। पहली मुलाकात थी, कभी भी मुरारी ने श्यामानंद पंडित को देखा नहीं था, लेकिन समझ गए कि यही होंगे श्यामानंद प्रभु। इतना तेज, ऐसे लग रहा था कि कोई देवता कोई यहां आए हैं। वो अपने भक्तों के संग आ रहे थे, कृष्ण के नाम का उच्चारण करके बिल्कुल प्रेमावेश में थे, भाव विभोर होकर भगवान का नाम ले रहे थे। और मुरारी समझ गए कि यही हैं मेरे गुरु, और तुरंत जाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों को अपने सर पर रखा, उनको निमंत्रण किया अपने राजमहल में, और वहां पे उनकी अच्छी तरह से पूजा अर्चा की, उनकी सेवा की। और उसके बाद श्यामानंद प्रभु ने मुरारी को दीक्षा दे दी और उनका नाम रखा रसिकानंद, और उनकी पत्नी का नाम रखा श्यामादासी। राधा कृष्ण मंत्र में उनको दीक्षा उन्होंने दे दी। और उसके बाद रसिकानंद हमेशा अपने गुरु के साथ में रहे, उनकी सेवा करते रहे, और बहुत ही जल्दी उनके बहुत निकट हो गए, उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य हो गए। उसके बाद में श्यामानंद पंडित ने रसिकानंद प्रभु को एक सेवा दे दी। गोपीजन वल्लभपुर नाम का शहर था जो कि श्यामानंद प्रभु से जुड़ा हुआ है, और उस शहर में सुंदर राधा कृष्ण की का मंदिर है। तो रसिकानंद प्रभु को उन्होंने सेवा दिया कि आप यहां रहकर इनकी सेवा करो। फिर रसिकानंद ने अपने हृदय से ये सेवा को, आदेश को स्वीकार किया। ये होता है आदेश का पालन, जिस तरह से ऐसे कानंद ने किया। एक बार उनको आदेश दिया का ये करो, बस आगे पीछे नहीं देखा, पूरा हृदय से उस सेवा को उन्होंने किया और इतने अच्छे ढंग से विग्रह की सेवा हुई कि सारे लोग प्रशंसा करने लगे कि आज तक यहां अर्चा विग्रह की सेवा ऐसे नहीं हुई है इतिहास में। तो कई सालों तक वो वहां रहे और गोपीचंद वल्लभपुर में विग्रह मंदिर में सेवा की और फिर उनका प्रचार का कार्य आरंभ हुआ। अपने ही गुरु की तरह बड़े जोरदार जबरदस्त प्रचारक थे। वो थे तो बड़े विद्वान, लेकिन दिव्य शक्ति उनमें इतनी थी कि आज तक लोग रसिकानंद प्रभु को याद करते हैं उड़ीसा में। उनका प्रचार इतना प्रभावशाली होता था कि अलग 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 तरह के लोग भक्त बन जाते थे। जो डाकू थे, चोर थे, जो नास्तिक लोग थे, जो यवन, म्लेच्छ, मुसलमान, ऐसे ऐसे लोगों को भी उन्होंने भक्त बनाया। खास करके भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि उन्होंने तीन राजाओं का नाम जिनको उन्होंने भक्त बनाया। एक है मयूरभंज के राजा जिनका नाम था वैद्यनाथ भंज, दूसरे थे पताशपुर के राजा जिनका नाम था गजपति, और मायना नाम के स्थान के राजा जिनका नाम था चंद्रभानु, इनको भी उन्होंने शिष्य बनाया। साथ साथ एक बहुत दुष्ट जमींदार था भीम और एक यवन था सुवा अहमद। ऐसे कितने सारे दुष्ट लोगों को, अच्छे लोगों को, डाकुओं को, राजाओं को, जमींदारों को उन्होंने भक्त बनाया, इसकी कोई संख्या गणना नहीं है। और केवल मनुष्यों को नहीं, भक्ति रत्नाकर में यहां भी इतना यहां तक बताया जाता है कि उन्होंने पशुओं को भी भक्त बनाया। वहां के जो हाथी थे उनसे संकीर्तन कराया, जैसे कि झारखंड में चैतन्य महाप्रभु ने कराया था। उन्होंने शेरों को भी भक्ति दे दी और वो शेरों ने अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति को त्याग दिया और उनसे भी उन्होंने हरिनाम लिया। तो इस तरह से रसिकानंद प्रभु का प्रचार बड़ा जोरदार चलता रहा उड़ीसा के प्रांत में, और उड़ीसा में सभी लोग रसिकानंद को जानते हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, उनमें से प्रमुख है श्यामानंद शतक, जिसमें उन्होंने अपने गुरु की प्रशंसा की है। साथ साथ श्रीमद् भागवत, श्री भागवत अष्टक और ऐसे कई भजन, कविताएं इत्यादि उन्होंने लिखी हुई हैं। अंत में उनका आविर्भाव 1652 में हुआ। करीब करीब 50 साल उन्होंने प्रचार किया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी तिरुभाव का समय आ गया है, तो वो रेमुना में आए। रेमुना में क्या है, हम सब गए थे ना यात्रा में, क्या है रेमुना में? खीर चोरा गोपीनाथ का मंदिर है। तो वहां पर जब वो एक दूसरे स्थान से रेमुना आए और खीर चोरा गोपीनाथ के सामने वो कृष्ण कथा कर रहे थे, थोड़ी देर गोपीनाथ जी के पास गए और वही उनके चरणों के वहां पर पढ़ के उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, फिर वापस गोलोक वृंदावन चले गए। तो इस तरह से इसी दिवस पर, इसी तिथि पर उनका तिरोभाव हुआ। उनके तीन पुत्र थे, श्री राधानंद, श्री कृष्ण गोविंद और श्री राधा कृष्ण। देखिए नाम भी ऐसे ही रखे उन्होंने अपने बच्चों को। और उनके वंश जो हैं आज भी गोपीचंद वल्लभपुर में हैं, उनके वंशज चल रहे हैं और वो वहां विग्रह की सेवा करते हैं। श्री रसिकानंद देव प्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो किसी के कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? हाँ जी, हो गए। जिनका व्यवसाय है भागवत का पाठ करना, तो वैष्णव आचार्य ने, खास करके गौड़ीय वैष्णव आचार्य ने इसकी कड़क निंदा की है। कि भागवत पाठ हमारे व्यवसाय के तौर से नहीं करना चाहिए, पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। भागवत पाठ करना है तो केवल लोगों को कृष्ण प्रेम बांटने के लिए, कृष्ण कथा में रुचि जागृत करने के लिए करना चाहिए, अपने पेट भरने के लिए नहीं। प्रभुपाद जी ने बहुत कड़ी निंदा की थी इनके बारे में, ये मनुष्यों में क्यों है। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में बताते हैं कि हर एक बद्ध जीव में मांसाहार और संभोग की ये जो भावना है, ये दो चीजों की भावना बहुत प्रबल है हर योनि में। इसलिए हर एक जीव के हृदय में या बद्ध जीव के हृदय में ये दो चीजें हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े बंधन के कारण हमारे लिए हैं यहां पर भौतिक जगत में। और मांसाहार के लिए खास देखा जाए तो हर जन्म में हम ये करते आए हैं, जब हम पशु के शरीर में थे हुआ होगा ना, हम सब हमारा जन्म कितने योनियों में, 84 लाख योनियों में हम कितना मांसाहार किया होगा, हमने कितने पशुओं को मार के खाया होगा, हमें याद नहीं। तो प्रवृत्ति चलती आ रही है पशु योनि से भी, हम उन चीजों को भूल गए हैं लेकिन वो प्रवृत्ति रही रहता है, वो पशु तुल्य है। जैसे पिछले कई श्लोकों में हमने देखा विपद पशु दो पैरों वाला पशु है, हत्या के लिए भी स्थान नहीं है, अगर बलि चढ़ाना भी है तो केवल बकरियों को और ऐसे नीच प्राणियों को, कभी गाय को नहीं, मनुष्य की बात तो दूर है। लेकिन जो गाय की हत्या करेगा, शास्त्र में बताया जाता है कि जितने उस गाय के शरीर के ऊपर बाल हैं उतने हजारों सालों तक उस व्यक्ति को नरक में रहना पड़ेगा। घाटे का सौदा है गाय की हत्या करना, अगर कोई आदमी ठंडे दिमाग से सोचे तो। कोई सोचेगा गाय की हत्या कर मैं बेचूंगा गोवा में जाकर तो मुझे इतने 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन उस 10,000 रुपए के लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उसे नहीं मालूम। अगर उसे मालूम होता तो शायद नहीं करता। प्रश्न ये है कि कृष्ण बलराम वृंदावन में बड़े हुए तो सुभद्रा देवी कैसे बड़ी हुई, उनका वर्णन। सुभद्रा देवी किन की पुत्री है, देवकी और वसुदेव की ही पुत्री है, देवकी और वसुदेव की पुत्री है। और जब कृष्ण बलराम चले आए, दोनों वृंदावन चले आए मथुरा से, तो फिर सुभद्रा देवी का बाद में जन्म हुआ। देवकी और वसुदेव तो मथुरा में ही थे, तो सुभद्रा देवी का जन्म हुआ मथुरा में, वो बड़ी भी हुई मथुरा में, और फिर कृष्ण बलराम यहां पर चले आए। जब कृष्ण भगवान की आयु करीब 10 साल की थी, वृंदावन छोड़कर मथुरा चले आए, और फिर जब 18 साल करीब करीब कृष्ण भगवान बलराम जी के साथ में मथुरा में रहे। उसके बाद में जरासंध ने 18वें बार आक्रमण किया, पहले 17 बार हार गया था, फिर भी 18वें बार आक्रमण किया, साथ साथ काल यवन नाम के व्यक्ति ने भी आक्रमण किया। तो उस समय कृष्ण भगवान ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अभी यहां नहीं मुझे द्वारका लीला आरंभ करना है, तो सारे मथुरा वासियों को उनकी नींद में ही उन्होंने स्थानांतरित करके द्वारका में जो नया शहर उन्होंने बनाया था समुद्र में, वहां पर स्थानांतरित कर दिया। और जब मथुरा के निवासी उठे तो उन्होंने देखा, अरे हम द्वारका में हैं, अलग मथुरा में नहीं है। तो फिर कृष्ण बलराम भी मथुरा से द्वारका चले गए। तो सुभद्रा देवी भी पहले मथुरा में रही और फिर बाद में द्वारका में, और द्वारका में अर्जुन वहां गए थे, और जब अर्जुन कृष्ण के घर में जाया करते थे तो उधर सुभद्रा देवी थी, तो अर्जुन ने सुभद्रा को देखा और फिर विवाह करना चाहा। उधर बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह जो है वो अर्जुन से नहीं होना चाहिए, किससे होना चाहिए, दुर्योधन से होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन तो बड़े प्रिय थे, प्रिय शिष्य थे बलराम जी के गदा युद्ध। तो कृष्ण और अर्जुन ने तरकीब सोची क्या करना चाहिए, कुछ रास्ता निकालना चाहिए, ये तो बड़ा अच्छा नहीं होगा। तो फिर अर्जुन ने सन्यासी का वेश पहन लिया और फिर सुभद्रा देवी ने अच्छी तरह से उनकी सेवा की और फिर अपहरण करके ले गए, विवाह किया। बलराम बड़े आग बबूले हो गए क्रोधित होकर, ये कौन है और अर्जुन है जानकर और भी क्रोधित हो गए। फिर कृष्ण भगवान के पैर पड़ने लगे, बड़े भैया दाऊजी भैया कुछ करना नहीं, ठीक है रहने दो, बहुत शब्दों से शांत किया। ये पहले से उनका प्लान था, ये गुस्से हो जाएंगे तो मैं उनको शांत करूंगा, तुम सुभद्रा को लेकर निकल जाओ। फिर वो अर्जुन की पत्नी बन गई। योग माया सुभद्रा है या नहीं, वैसे योग माया तो चली गई लेकिन इस अवतार में सुभद्रा देवी का जन्म अलग से हुआ, अलग से मथुरा में हुआ। योग माया का प्राकट्य देवकी वसुदेव के जो मथुरा के कारागर में वो अलग है, लेकिन उनका जन्म अलग से हुआ। ठीक है, कई बार लोग सोचते हैं कि सुभद्रा देवी जो कृष्ण की पत्नी है, कई लोग हमसे पूछते हैं, खास जिनको मालूम नहीं है वो कौन है, सोचते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण, सोचते सुभद्रा भी उनकी कोई पत्नी होगी, लेकिन पत्नी नहीं, बहन है उनकी। प्रश्न यह है कि जड़ भारत इतने सतर्क थे, सावधान थे, वो कहीं माया में फंस न जाए भौतिक शक्ति में, और हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमें कैसे समझना चाहिए कि ये भौतिक हम शक्ति में है या आध्यात्मिक शक्ति में है के प्रभाव में है, कैसे समझना चाहिए। परिणाम से फले न परिचय थे। अगर हमारे अंदर भक्ति की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में हम हैं। हमारी इंद्र तृप्ति बढ़ रही है, इसका मतलब हम भौतिक शक्ति के प्रभाव में हैं। इसमें स्थान का कोई महत्व तो है लेकिन केवल स्थान के ऊपर निर्भर नहीं होता। कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा है, भागवत क्लास में बैठा है, लेकिन मन कल रात को देखा हुआ सिनेमा का गाने के ऊपर चल रहा है तो वो भौतिक शक्ति के प्रभाव में है। मंदिर में बैठते हुए भी प्रभाव भौतिक शक्ति का है। और कोई व्यक्ति बाहर सड़क पर चल रहा है, सब गाड़ियां जा रही हैं, सब माया का खेल है बाहर, लेकिन मन में भगवान का स्मरण कर रहा है तो बाहर होते हुए भी वो आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में है। हालांकि ऐसा आध्यात्मिक वातावरण भक्ति के लिए, हमारे आध्यात्मिक शक्ति में आने के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए हम यहां आते हैं।